प्यारे बाप दादा की इस सीजन में 3 मुरलियां चल चुकी है। आप सबने भी इन अव्यक्त वाणियों का अभ्यास किया होगा। 4 नवंबर, 25 नवंबर और 15 दिसंबर, इन मुरलियों में बाबा ने ये विशेष इशारा दिया है। विशेष 4 नवंबर और 15 दिसंबर की मुरली में कि बच्चे अब हद से ऊंचे जाओ, हद की बातों को छोड़ो, हद के संस्कारों को छोड़ो, बेहद की दृष्टि वृत्ति और कृति को अपनाओ। अवश्य ही इस बात पर आपका चिंतन चला होगा कि हद की बातें छोड़ना माना क्या, हद की बातों से ऊपर जाना माना क्या। वैसे बाबा शुरू से हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराते रहे हैं कि बेहद का बाप तुम्हें मिला है। तो हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट है कि हद का बाप माना एक जन्म का बाप। कुछ 8-10 बच्चों का बाप, एक जन्म का वर्षा देने वाला बाप, लेकिन बेहद का बाप माना सारे विश्व का पिता, सर्व आत्माओं का पिता, जो अविनाशी हैं, ओरिजिनल हैं, जो हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला है, समय के हिसाब से भी बेहद 21 जन्म और प्राप्ति के हिसाब से भी बेहद विश्व का मालिक बनाता है। चलो 21 जन्म के लिए कोई छोटी मोटी कोई प्राप्ति करा दे, वो भी नहीं, विश्व की राजाई देते हैं। और टाइम लिमिट के हिसाब से भी थोड़ा नहीं, कोई एक जन्म केवल नहीं, आधा कल्प, 21 जन्म। तो टाइम वाइज भी बेहद और हाइट वाइज भी बेहद। और ऐसे बेहद के बाबा बेहद का ज्ञान हमें देते हैं। हद का ज्ञान माना इस भौतिक जगत का ज्ञान, जो इन आंखों से दिखाई देता है, उन अस्तित्वों का ज्ञान, वो है हद का ज्ञान। बाबा हमें बेहद का ज्ञान देते हैं, उसमें 3 बातें, न केवल वर्तमान का लेकिन सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान और न केवल इस लोक का ज्ञान, क्योंकि सृष्टि चक्र का ज्ञान वो इस लोक का ज्ञान है, और केवल इस लोक का नहीं लेकिन आलोक और परलोक तीनों लोकों का ज्ञान बाबा हमें देता है, और वो सारे ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स, वो सारे ही सनातन सत्य जिनके आधार पर हमारा जीवन चलता है और ये संसार चक्र चलता है, वो सारे ही सनातन सत्य अविनाशी सत्यों का ज्ञान बाबा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का ज्ञान देता हूं। तो ऐसे बेहद के बाबा को और ऐसे बेहद के ज्ञान को पाकर स्वाभाविक है हम बच्चों की बुद्धि भी अब बेहद की विशाल बुद्धि, दुरंदेशी बुद्धि बनी है। कहा पहले के जीवन को हम याद करें और अब हम बाबा के बने हैं, बाबा के बनते ही ये परिवर्तन हमारा प्रारंभ हो जाता है, हद से बेहद की ओर जाने का। कहां बुद्धि देह में सीमित थी, शरीर को खिलाना पिलाना श्रृंगारना सजाना पहनना, हमारा बुद्धि योग उसी में लगा हुआ था। जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं था, जो दैहिक भौतिक सांसारिक कामनाएं होती है उसी में सीमित हमारा जीवन था। लेकिन बाबा के एक ही सत्य ने देह की सीमाओं से ऊपर हमें कर दिया, हम अपने अविनाशी आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। केवल इस एक सत्य को समझने से हमारी जीवन पद्धति ही बदल गई। कहां देह समझने के कारण जीवन की भोगवादी प्रणाली थी, प्रेय मार्ग पर जीवन जी रहे थे, अपने वास्तविक अविनाशी आत्म स्वरूप को जानने से हमारी योगी जीवन पद्धति बन गई, जीवन का श्रेय मार्ग हमारा बन गया। ये जीवन का पहला परिवर्तन है। क्योंकि आत्मा को सबसे पहली हद लिमिटेशन जो आती है वो देहभान से आती है। जो हमारी बुक निकली है विदेही स्थिति वाली, कल मैंने उसमें एक पॉइंट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देह भान, देह समझने से देह भान में आते हैं और दैहिक संस्कार हमारे जागृत होते हैं। देह से पर हो जाने से ऑटोमेटिक दैहिक संस्कार भी, उससे भी आप पर हो जाएंगे, क्योंकि जब शरीर की सीमा में हम बंधते हैं तो आप पाएंगे कि बुद्धि में कितने भेद और कितनी हद उत्पन्न होती है। देह के नाम, रूप, संबंध, जाति, भाषा, धर्म, नेशनलिटी, लिंग, है ना, ये सारे भेद, ये सारी हदें केवल एक शरीर की सीमा को स्वीकार करने से है और समाज के आधे प्रॉब्लम्स आप देखेंगे इसी देहभान के कारण है। चाहे जाति भेद है, ज्ञाति भेद है, स्त्री और पुरुष के जो भेद हैं, भाषा भेद, धर्म भेद, जिनके कारण इतने सारे तनाव और आतंक लगे हुए हैं, उसका बीज, रूट कॉज जो है वो केवल अपने हद के स्वरूप में फंसना है। क्योंकि हमारा जो शारीरिक स्वरूप है, एक तो वो बाह्य स्वरूप है, विनाशी स्वरूप है, एक जन्म का ये स्वरूप है और ये प्राकृतिक और भौतिक स्वरूप है, लेकिन केवल उनके कॉन्शियस बनने से आत्मा के अंदर कितनी लिमिटेशंस आ जाती है। आज सारा संसार जिन हदों में, भेदों में बटा हुआ है, वो एक ही कारण से, बाबा के ज्ञान का ये पहला लेसन सुनने में और समझने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन वो कितना महान सत्य है कि हमें इन सब बातों से न्यारा कर दिया। आज हमारी सबके प्रति आत्मवत दृष्टि है। यथार्थ ज्ञानी और सच्चा योगी हम उसको ही कहेंगे जो आत्मभाव में रहता है और सबके प्रति जिनका आत्मीयता से व्यवहार है, तब कहेंगे कि हमने बाबा के ज्ञान के पहले सत्य को समझकर शरीर भान की सीमा को हमने समाप्त किया है। प्रैक्टिकली सोल कॉन्शियस बनना सामान्य बात नहीं है। देखो, हम भारत में हैं, फिर भी मेजोरिटी भक्ति के हिसाब से कहे तो हिंदू धर्म के भाई बहने हैं, कुछ कुछ बाबा के और भी विशेष बच्चे हैं, लेकिन मेजोरिटी, तो हमारा कल्चर भी वही एक भारत का है, तो हमारा खान पान आहार व्यवहार भी बहुत करके सिमिलर है, भोग भी बाबा का उस हिसाब से बनता है। मैं अमेरिका गई तो वहां पर हमने देखा, अमेरिका में तो सभी कल्चर के लोग हैं, वहां स्पेनिश भी है तो मैक्सिकन भी है तो इटालियन भी है तो जर्मनी के भी है तो इंडियन के भी है तो एशियन भी है, सब प्रकार के हैं। अब वहां केवल हमारे एक ही स्वाद का तो भोग नहीं बन सकता है ना, तो प्रैक्टिकल वहां अनुभव होता है कि सचमुच हम कहते हैं सोल कॉन्शियस, लेकिन प्रैक्टिकल खाने पीने की बात जब आती है तो वही लिमिटेड हमारे अपने स्वाद हमारे अंदर होते हैं। इसलिए वहां हरेक के टेस्ट की चीजें बनती है। तो केवल मैं आत्मा हूं ये समझना और प्रैक्टिकली उस बेहद भाव में रहना, ताकि पर्टिकुलर जाति भाषा समाज के किसी भी आहार विहार व्यवहार के लिमिटेशन में हम ना बंधे हों और हम इससे ऊपर स्थिति में रहे, ये एक अभ्यास की आवश्यकता है। इसी प्रकार बाबा का बेहद का ज्ञान हमें बेहद की भावनाओं में ले जाता है। कहां हम अपना ही सोचते थे, अपने ही परिवार के लिए सोचते थे और कहीं विशेष सेवा भावी अपने को बताकर हम अपने समाज के ही हित की बातें सोचते थे, लेकिन अब हम देह की सीमाओं से ऊपर आत्मभान में स्थित हुए हैं और बाबा से योगयुक्त हुए हैं, तो अब हम सारे विश्व के लिए सोचते हैं, सारे विश्व की आत्माएं हमें अपनी नजर आती है, सारा विश्व हमें परिवार महसूस होता है। तो इतना हमारा बेहद विशाल रूप जो बना, चाहे भावनात्मक दृष्टि से हम कहें हमारे दिल की विशालता आई, या बौद्धिक रूप से हम कहें हमारी बुद्धि की विशालता आई, कि अब हमें वो समाज के जाति के ज्ञाति के भेद नहीं, हद नहीं है, सारे विश्व की आत्माओं के लिए वो आत्मीयता है, कल्याण की भावना है। क्योंकि प्रैक्टिकली बाबा ने हमें ऐसे ब्राह्मण परिवार के अंदर बांधा है जो सारे विश्व का एक छोटा सैंपल रूप है। आप देखो विश्व में जितनी वैरायटी है वो हमारे ब्राह्मण परिवार में है, क्योंकि बाबा विश्व का पिता है, बेहद का बाप है। वो प्रैक्टिकली सिद्ध तभी होगा ना जब हर प्रकार की आत्मा बाबा की बनेगी, और प्रैक्टिकली ऐसा है। पर्टिकुलर आप मधुबन में आते हैं, देश विदेश के भाई बहनों से हम मिलते हैं, तो प्रैक्टिकल में ये दिखाई देता है कि सचमुच विश्व का एक सैंपल रूप यहां पर है। इसलिए बेहद ब्राह्मण परिवार के अंदर हम कितनी विशालता के साथ और आत्मीयता से चलते हैं, हमारा वो व्यवहार हमें बताता है कि हमारी स्थिति बेहद में है या हद में है। क्योंकि जब उस विशाल भाव में आप आ जाते हैं, तो जैसे आप अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार को भी आप चलाएंगे। आज लौकिक में आपका अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, वो भी तो वैरायटी संस्कार के हैं। लेकिन एक बार जिससे हमारे संबंध बने, जिससे हमारा परिवार बना, तो हम उस परिवार के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते भाई तुम्हारे संस्कार ठीक नहीं है, मैच नहीं करते, चलो तुम निकलो। नहीं है, हम समझते हैं कि भी अपनी ही रचना है, हमें चलानी ही है, मिलके चलना ही है। इस प्रकार बेहद की हमारी स्थिति है, इसका प्रमाण ये है कि हम इस ब्राह्मण परिवार की भी वैरायटी आत्माओं के साथ शुभ भावना से, प्यार से चल सके। ज्ञान सरोवर में एक प्रोग्राम में कुछ मेहमान आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये दूसरे मेहमान माना, ये लोग इतना भोजन वेस्ट करते हैं, आप लोग कुछ कहते नहीं हो इसको। तो हम लोगों ने बोला कि हम बेशक उनको सूचनाओं में ये बात बताते हैं, परंतु उसके बाद अगर कोई वेस्ट करते हैं, तो आपके घर में अगर कोई आया हुआ मेहमान वेस्ट करे, तो आप कुछ कहेंगे उसको, क्या व्यवहार करें? तो ये भी बाबा के घर में आए हुए बच्चे हैं। तो केवल अपने 4-6 सदस्यों के साथ आत्मीयता रखना, कहा वो हमारा हद का जीवन था। अब इससे बेहद में ब्राह्मण परिवार में, जहां विभिन्न भाषा, जाति, एजुकेशन, ज्ञाति के धर्म वाले भाई बहने आते हैं, जो अपने देह के धर्म संबंध को छोड़कर बाबा के शरण में आए हैं, माना हम सब ने एक बाबा के श्रेष्ठ ज्ञान को स्वीकार किया है, तो यहां हमारी एक दो के साथ वो ही आत्मीयता हो जैसी हमारी अपने बच्चे और परिवार के साथ होती है। और आप अनुभव करेंगे कि जब ऐसी आत्मीयता और अपनत्व से हम चलेंगे, तो ब्राह्मण परिवार की, हमारी आपस की जो संस्कार स्वभाव की बातें हैं, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो हमें बार बार तब माइंड होती है जब थोड़ा भी अंदर से परायापन होता है। बात को समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप देखिए, लक्ष्य हमारा कितना बेहद का है, समय बेहद की प्राप्ति का है, कोई एक जन्म के लिए पढ़ाई नहीं है, एक जन्म की कमाई के लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हम सबको स्पष्ट है कि ये हमारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, न केवल जन्म जन्मांतर, लेकिन कल्प कल्पांतर की कमाई के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे। केवल अच्छा बनने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बाप समान बनने का लक्ष्य, ये कितना बेहद का लक्ष्य। अब ऐसे बेहद के लक्ष्य को अगर हमें सचमुच सिद्ध करना है तो हमें हद की छोटी मोटी तेरे मेरे स्वभाव की ऊंचाई निचाई की बातों से ऊपर उठना होगा। अगर हमारा बुद्धियोग इन बातों में जाता है तो हमारा काफी चिंतन वेस्ट हो जाता है। मैंने एक व्यक्ति, महान व्यक्ति के चिंतन में पढ़ा था, उसने स्पष्ट लिखा था कि ईर्ष्या करना, द्वेष करना, परचिंतन, निंदा करना, ये सब दासों के संस्कार है, ये राजा के संस्कार नहीं। हमारा लक्ष्य क्यों बाबा कहते हैं मैं राजयोग सिखाने आया हूं, राजाओं का राजा बनाने आया हूं, उस ऊंची स्थिति में चले जाए तो हम इन नीचे की हद की हल्की क्षुल्लक व्यर्थ बातों में जाएंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्य बेहद का है, अविनाशी प्राप्ति का है, ऊंची से ऊंची प्राप्ति का है। और अब समय, क्यों बाबा कहता है अब हद की बातों से ऊंचे आओ, ये अब शब्द बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि अब समय हो चुका है। देखो, व्यक्ति सारा वर्ष घूमता रहता है, खेलता रहता है और बातें एंजॉय करता रहता है, लेकिन एक दुनिया का कॉमन स्टूडेंट भी एग्जाम के समय अपनी पढ़ाई के लिए कॉन्शियस हो जाता है। सारा वर्ष अलबेला रह के घूमने वाला, खा पी के मौज करने वाला, पीरियड मिस करने वाला एक इंसान भी एग्जाम आने पर अलर्ट हो जाता है। तो हम तो कौन है, हम तो बाबा के बच्चे कौन है। चलो, अब तक संगम के दिनों को हमने जैसे भी बिताया, कैसे बिताया हर एक अपना जानते हैं, कोई आवश्यकता नहीं कि टीचर हमें बताए, नहीं, हर एक अपने चार्ट को जानते हैं, अपनी अचीवमेंट को जानते हैं कि 2 साल से ज्ञान में चलकर, 8 मास से ज्ञान में चलकर, 10 साल से ज्ञान में चलकर, 20 साल से ज्ञान में चलकर मैंने कितना सिद्ध किया है और कहां तक अपने को ऊंचा उठाया है। हम हरेक अपने आप के साक्षी है, है ना? और जब हम बाबा के इशारों के अनुसार खुद को चेक करते हैं, जितनी ऊंची मंजिल की बात है, जितना ऊंचा बाबा पढ़ाता है, जितना सत्य ज्ञान है, जो समय की लिमिट है, उस हिसाब से हम अपने रिजल्ट को चेक करते हैं तो हम अवश्य कहेंगे कि कुछ परसेंटेज में, कोई बात में हम अलबेले जरूर रहे हैं। इसलिए फिर भी अब जबकि हम अंत पर पहुंचे हैं, अब तक जो जो मुश्किल आते हमने पास की हैं, वो पेपर नहीं है, वो तो पढ़ने में जो डिफिकल्टीज आती है वो है। पेपर तो अब होने हैं, हम तो छोटी मोटी बातों के लिए सोचते रहते हैं, अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा पेपर दिया है। वो पेपर नहीं है, वो तो पढ़ाई को रेगुलर करने में और लक्ष्य को निश्चित करने में जो बातें आती है वो है। पर हमने जो पढ़ा, बाबा ने जो हमें पढ़ाया है, उसका पेपर तो अब होना है ना। प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस आनी है, चाहे विनाश की, चाहे प्राकृतिक आपदाओं की, चाहे विश्व की व्यवस्था जो अस्थिर होनी है, उसके बीच में हमने क्या पढ़ा, कहां तक ज्ञान ग्रहण किया, कहां तक बाबा को अविनाशी साथी बनाया, कहां तक अपनी स्थिति को अचल और एकरस बनाया, वो पेपर तो अब आने हैं ना। और वो सारी तैयारी करने के लिए बाबा हमें कहते हैं कि अब हद की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो। एक हद की बातें हैं हमारे अपने ही पुराने संस्कारों के डिस्टरबेंस की। व्यक्ति को और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, परिवार का भी पूरा साथ है, आर्थिक शारीरिक सामाजिक रूप से भी ठीक है। विघ्न है हमारे अपने संस्कारों के, हमारी अपनी गलत आदतों के। कई अनुभव करते हैं कि हमारे अपनी ही वृत्तियां, हमारी अपनी ही इच्छाएं, हमारे अपने पुराने कलियुगी संस्कार जो हमें ही डिस्टर्ब करते हैं, ये है हद के संस्कार। क्योंकि ये देहभान से पैदा हुए संस्कार, आत्मा के अविनाशी, उसके अनंत ओरिजिनल संस्कार तो पवित्रता के हैं, श्रेष्ठता के हैं, शुद्धता के हैं। ये देहभान से बने हुए संस्कार वो है हद के संस्कार, जो हमारे स्वयं के लिए ही डिस्टर्बेंस है। और वो तब तक है जब तक हमने दृढ़ता से लक्ष्य को नहीं अपनाया। अगर मुझ आत्मा का ये निर्णय है, जो बाबा कहते हैं वो मैंने दिल से अगर स्वीकार किया है, तो परिवर्तन मुश्किल नहीं है। संस्कार इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं वो तो अच्छा लगता है, लेकिन वो पुराने रस भी अच्छे लगते हैं, इसलिए दोनों हम चलाते रहते। लेकिन नहीं, अब हमें अपने आप से फैसला करना होगा कि अगर सचमुच लक्ष्य है बाप समान बनने का, तो अब ये संस्कार नहीं चाहिए। दूसरा है हमारे आपसी स्वभाव संस्कार, हमारे आपस के कर्मिक अकाउंट, एक दो के स्वभाव संस्कार के लिए सोचते रहना, ये ऐसा है, वे वैसा है, फलाना ऐसे करता है, ये ठीक नहीं चलता है, मुझे इनके तरफ से विघ्न है, इनके कारण मुझे डिस्टर्बेंस है, ये आपस से हमारे संस्कारों के हिसाब किताब अभी तक हम उसी में उलझे हुए हैं। चाहे हम सेवा करते हैं उसमें भी विघ्न आते हैं, वो हमारे ही आपस के संस्कारों से आते हैं। अब दुनिया वाले विघ्न नहीं डाल रहे हैं, अब हमारे अपने ही आपस के संस्कारों के टकराव की बातें हैं। अब उसमें भी न्यारे हो जाए, क्यों? एक तो ये स्पष्ट रहे कि अंत तक नंबरवार तो रहना ही है। कब तक आप सोचते रहेंगे और माइंड करते रहेंगे ये क्यों ऐसा करता है? बाबा ने नहीं कहा कमजोर पुरुषार्थ का दरवाजा क्या है? क्यों, हर बात में क्यों? बाबा इतना कहता है ये क्यों नहीं सुधरता है? बाबा के कार्य में ही ये भाई क्यों ऐसा करता है? सबके साथ अच्छा चलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? बाबा कहते नहीं, ये क्यों क्वेश्चन करना, माना आप नॉलेजफुल नहीं है। बुद्धि में नॉलेज तो है ना कि हर आत्मा के अपने संस्कार है, हर आत्मा की अपनी लिमिटेशन है। ये जानते हुए भी हम ये प्रश्न करते हैं, माना उस क्षण हम नॉलेजफुल स्थिति में नहीं है। इसलिए नॉलेजफुल बने, ज्ञान स्वरूप बने। जैसे बाबा हम बच्चों को चला रहे हैं, इससे अगली मुरली में था ना कि बाबा सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। बाबा जानते हैं अगले वर्ष यही मिलने आया था और वैसे का वैसा ही वापस इस सीजन में आया है, कोई सुधार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी बाबा कहेगा उड़ती कला में जा रहे हो ना। लेकिन जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, क्यों? अपना कार्य बाबा को करना है। बाबा को अटकना नहीं है कि हम लेसन नहीं करेंगे तो पढ़ाई आगे नहीं चलेगी, नहीं, उसको तो अपना काम करना ही है। प्रैक्टिकल दादियों को देखते हैं, महारथी भाई बहनों को देखते हैं, वे भी हमें जानते हैं, लेकिन यज्ञ चलाना है, बाबा का कार्य कंप्लीट करना है, इसलिए वे हमें प्यार ही करते हैं, पालना ही देते हैं। तो अब हमें भी वो मेथड अपनानी है, हम भी व्यर्थ सोच में नहीं जाएं, माइंड नहीं करें इन बातों को, लेकिन शुभ भावना रखते हुए अब अपने को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है लक्ष्य के प्रति। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी शक्ति से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं ऐसे याद में खो जाओ, ये अनुभव करो कि एक बाबा है और एक आप है, बाकी कोई विश्व का अस्तित्व नहीं है, इतना मगन हो जाओ, इतने अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। वो तभी हो सकता है जब हम इन हद की बातों को छोड़ेंगे। प्रॉब्लम्स रहेंगे, मुश्किल आते हैं, शरीर के अपने प्रॉब्लम हैं, संबंधों के अपने प्रॉब्लम हैं, संसार के अपने प्रॉब्लम हैं, लेकिन आप सबको याद होगा जब ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट चला था, उसमें जब वर्कशॉप कराते थे तो हम उसको ये कहते थे कि वर्तमान समय विश्व की बहुत सारी नेगेटिविटीज है, लेकिन उसको एक और करके पॉजिटिवली आप सोचिए, बेटर वर्ल्ड कैसा हो सकता है। हम उस चिंतन में लोगों को ले जाते थे। ये हमें खुद पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, बातें हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दो जो लक्ष्य से वो ऊंची हो जाए और लक्ष्य छिप जाए। ठीक है, ये बातें हैं, उसको साइड में करके लक्ष्य को बुद्धि में रखते हुए सोचे कि हमें क्या करना। तो हम अपने मिले हुए इस बेहद भाग्य का अनुभव कर सकते हैं। बार बार हम ये अभ्यास करें, जब जब योग अभ्यास करते हैं, अपने को सब बातों से समेट कर, हर बातों से न्यारा करके, अपने में इतना हम खो जाए जो हम अपने अनंत अविनाशी बेहद स्वरूप का अनुभव कर सके। बाबा बेहद में खड़ा है, कहते हैं ना, बेहद में रहकर बात करो, माना हद की, तेरी मेरी, इधर की उधर की, ऊंचाई की नीचाई की, इन सब बातों से ऊंचे हो जा। जब आप पहाड़ी पर खड़े होकर फिर नीचे देखेंगे तो नीचे की चीजें कैसी दिखाई देगी? छोटी छोटी दिखाई देगी। वही चीजें ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी लगेगी। तो हम भी अपनी उस ऊंची स्टेज में चले जाएं, तो ये छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। कैसी भी बातें हमें छोटी महसूस होगी, और इसलिए बाबा कहते हैं कि उड़ती कला वो है, क्योंकि चलने में तो बहुत डिस्टर्बेंस आएंगे, उड़ने में सब कुछ ओवरकम करके व्यक्ति आगे चला जाता है। एरोप्लेन देखो कैसे पार कर देता है, वही रास्ता रोड से पास करना हो तो कितने डिस्टर्बेंस आएंगे। तो हम भी इस ग्राउंड से, देहभान रूपी ग्राउंड से ऊपर उठ जाएं और बेहद में विशाल बुद्धि से ज्ञान स्वरूप बन के, त्रिकालदर्शी बन के, आदि मध्यंत सोच समझकर, वर्तमान की हद की प्राप्ति के आकर्षण में न आकर, दुरंदेशी होकर सोचकर, लंबी प्राप्ति के ख्याल से अपने को चलाएं, तो इसको कहेंगे बेहद में स्थित होते जाना। ओम शांति। हम 3 मिनट अभ्यास करेंगे बिल्कुल बेहद में स्थित होकर, अपने हद के दैहिक स्वरूप, अपने हद के हिसाब किताब के जीवन की बातें न सोचकर, जो बेहद की प्राप्ति हमें हुई है उस नशे और खुशी की बातें सोचेंगे। मैं कौन हूं, कौन मुझे मिला है और किस कार्य के लिए अब मैं निमित्त हूं। देख ध्यान की सीमाओं से पार अपनी शाश्वत सनातन स्वरूप में स्थित हो जाए। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं अनंत अविनाशी दिव्य चेतना इस बेहद वर्ल्ड ड्रामा की पाल्टधारी हूं। विश्व की स्टेज पर मेरा हीरो पार चल रहा है। बेहद के पिता स्वयं परमात्मा के साथ मेरा रोल है। जैसे वो समग्र विश्व के हैं, मैं भी विश्व कल्याणकारी मेरे अंतर्मन में समस्त विश्व की आत्माओं के लिए शुभ भावना रहम का भाव परोपकार की वृत्ति है। स्थल
और काल के बंधन से पर। अविनाशी आत्मा, तेरे और मेरे की भावना से पर, सर्व भाव को धारण किए हद से पर, बाबा के प्रति समर्पित मैं वो माध्यम हूँ जिसके द्वारा बाबा कार्य कर सके, मेरा अस्तित्व निजी स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व समस्त विश्व के लिए है। मैं व्यक्ति नहीं, बाबा से जुड़कर अब मैं बेहद स्वरूप में आ गई हूँ। मैं व्यक्ति नहीं, ये संस्था हूँ, यज्ञ हूँ। एक स्थान पर रहते हुए सारे विश्व के लिए मुझे सोचना है। हम इस कल्प वृक्ष के मूल में बैठे हैं। विश्व की पूर्वज आत्मा बाबा से मिला खजाना सर्व आत्माओं को पहुंचाना है। सर्व को शांति की शक्ति की अंजलि प्राप्त करानी है। मुझे हरदम अपने इस कर्तव्य की सभानता रहे। मैं विशेष आत्मा बाप के कर्तव्य की जिम्मेवार आत्मा हूं। मैं वो महारथी आत्मा बन जाऊं शिव बाबा की समस्त शक्तियों को स्वयं में धारण करते हुए विश्व में प्रवाहित करती रहूं।